राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच जो डील साइन हो रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था। प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। अभिमन्यु जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगा तो उसने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक राघव के साइन नहीं हुए थे। अभिमन्यु के पूछने पर राघव ने कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी साइन करेगा जब नक्श को इस प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन दी जाएगी। राघव ये सब आयशा का एहसान चुकाने के लिए कर रहा था। राघव को लगा कि अभिमन्यु उसकी शर्त मानकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अभिमन्यु भी अपनी जिद का पक्का था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वहां एक चुप्पी छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था जो पहले बोलेगा वही इस जंग में हार जाएगा। एक लंबी चुप्पी के बाद राघव को लगा कि अभिमन्यु हार नहीं मानेगा, तब उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर राजवंश, मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी कि मिस्टर नक्श राजवंश को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। राघव के कहते ही अभिमन्यु ने थोड़ा नरमी से कहा, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अगर मुझे लगा कि फ्यूचर में नक्श इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा तो मैं उसे ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा। अभिमन्यु ने अपनी तरफ से एक प्रॉमिस किया था, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब नक्श खुद को साबित करेगा। दोनों पक्षों ने उसकी बात पर सहमति जताई। पूरी बात फाइनल हो जाने के बाद अभिमन्यु और राघव ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। राघव खड़ा हुआ, उसने अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपके साथ काम करके अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि हम फ्यूचर में फिर से कोलैब करेंगे। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ये रवैया यही जता रहा था कि थोड़ी देर पहले राघव ने जो शर्त रखी थी वो उससे अब तक नाराज था। राघव को अभिमन्यु से अकेले में बात करनी थी, इसलिए उसने सबको वहां से भेज दिया था। अब मीटिंग रूम में सिर्फ अभिमन्यु और राघव ही बचे थे। अभिमन्यु भी वहां से जाने के लिए निकल रहा था, तभी राघव ने पीछे से तेज आवाज में कहा, देखो तुम मुझे गलत मत समझो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मासी का बदला तुमसे निकाल रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता हूँ। आयशा सिंघानिया ने मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान किया है और बदले में वो नक्श का प्रमोशन चाहती है, तुम्हें इसलिए ये सब कर रहा हूँ। अभिमन्यु ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर सख्ती से बोला, मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है और ना ही तुम्हें सफाई देने की जरूरत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या और क्यों करते हो। अभिमन्यु का इतना रूखा बर्ताव देखकर राघव को गुस्सा आने लगा। वो चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं जानना होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले मेरी बहन कियारा मित्तल की हालत हॉस्पिटल में बहुत खराब थी, वो मरने वाली थी, ऐसे में कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तब आयशा सिंघानिया आगे आई और उसने मेरी बहन की जान बचाई, मैं बस उसके एहसान का बदला उतार रहा हूँ। राघव और अभिमन्यु के बीच कोई गलतफहमी ना आए इसलिए राघव ने उसे सब बता दिया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। अभिमन्यु चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। पृथ्वी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु के निकलते ही वो उसके पीछे चलते हुए बोला, सर, दोनों कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है उसकी तैयारियां हो गई है। राघव मित्तल के मॉम डैड भी यहाँ आए हुए हैं तो निश्चित रूप से वो भी इस पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब में इतना ही कहा। अभिमन्यु को उनके परिवार के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर नैना मित्तल के बारे में जो उसकी मासी लगती थी। पृथ्वी अभिमन्यु के पीछे पीछे चल रहा था। वो बोला, पार्टी हमें भी अटेंड करनी होगी, अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऑफिस में किसी से बात करूं या फिर हम मिस सिंघानिया को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वहां ज्यादातर कपल ही आने वाले हैं, ऊपर से सबको पता है कि आप मैरिड हो। मिस सिंघानिया को गेट टुगेदर अटेंड करना पसंद नहीं है तो तुम उसके बारे में भूल जाओ, अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। अभिमन्यु ने किसी और को साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था, इसका मतलब पृथ्वी समझ गया था कि उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अचानक पृथ्वी चौंक गया, उसने मन में कहा, क्या इन्होंने अभी अभी ये कहा कि उन्हें गेट टुगेदर पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें मिस सिंघानिया की चॉइस से इतना फर्क कब से पड़ने लगा, पहले तो उसका नाम लेने पर गुस्सा हो जाया करते थे। पृथ्वी ने महसूस किया कि अभिमन्यु का बर्ताव काफी बदल गया है लेकिन इशिका की तरफ से उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अभिमन्यु जब कमरे के अंदर आया तो हमेशा की तरह उसके चेहरे के भाव सख्त थे, मानो वो कई सारे लोगों को एक साथ डांट कर आया हो। बिल्लू ने भी आकर अभिमन्यु के सामने पूंछ हिलाई लेकिन अभिमन्यु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इशिका नजरें चुराकर उसे देख रही थी। इशिका ने अपना काम जारी रखा, आखिर उसे जल्द से जल्द वसुधा के लिए दवाई बनानी थी ताकि उसे सब याद आ जाए। वही वसुधा ये सोच रही थी कि उसे किस तरह इशिका और अभिमन्यु को करीब लाना चाहिए। अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। इस बीच वसुधा ने पृथ्वी से धीमी आवाज में कहा, आज उसे मित्तल परिवार के साथ काम करने में दिक्कत हुई होगी ना, शायद तभी वो इतना परेशान नजर आ रहा है। जब सामने राघव मित्तल जैसा इंसान हो तो परेशानी होनी ही है दादी, पता नहीं उस इंसान को दिक्कत क्या है जो वो हमेशा सर के खिलाफ डिसीजन लेता है और हमेशा लड़ाई करने के मौके ढूंढता रहता है, उसका बस चले तो वो नक्श राजवंश को कंपनी का हेड बना दे, पृथ्वी ने जवाब दिया। पृथ्वी की बात सुनकर ऋषिका ने उसकी तरफ घूरा, वो नक्श की बुराई वसुधा जी से कर रहा था, मानो वसुधा और नक्श का कोई रिश्ता ही ना हो। इशिका को लगा कि वसुधा पृथ्वी को डांटेगी, लेकिन वसुधा ने उसे उल्टा ही कहा, मुझे नहीं लगता कि नक्ष का मित्तल परिवार के साथ कोई रिश्ता होगा। उल्टा, मित्तल परिवार को तो उनसे नफरत करनी चाहिए। अगर इस लड़के की माँ की जिंदगी खराब हुई तो नक्ष के बाप की वजह से, वरना वो जैसे तैसे करके यहाँ रुक ही जाती। वसुधा बिना किसी सोच विचार के हमेशा अभिमन्यु का ही साथ देती थी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। पृथ्वी ने चिढ़कर जवाब में कहा, अफसोस की बात है कि मित्तल परिवार अपने सगे रिश्ते को भूलकर उन लोगों के साथ रिश्ते निभाने में लगी हुई है जिनकी वजह से उनकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी। जिसे नफरत करनी चाहिए उनके साथ रिश्ते अच्छे से निभाए जा रहे हैं, और जो खुद का खून है उस पर गुस्सा दिखाया जा रहा है। इशिका को लगा वो दोनों यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन वसुधा ने आगे कहा, सुबह क्या हुआ था? तुम लोग उस औरत की बेटी से मिलने के लिए गए थे ना? उसने इस लड़के को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया क्या? आखिर वो उसकी बहन का बेटा है। दादी, हम उनसे नहीं मिले, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। उनके गार्ड ने कहा कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है और हमें भेज दिया। पृथ्वी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? कौन सा तुम दोनों जाकर उसके साथ में बातें करने वाले थे? बस एक बार देखना ही तो था। उन्होंने कभी अपनी तरफ से रिश्ते ठीक करने की कोशिश नहीं की, और अब तुम लोग गए तो उन्होंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, वसुधा ने हल्के गुस्से में कहा। वसुधा बहुत ज्यादा सोच रही थी। पहले अभिमन्यु के साथ जो भी हुआ उसके लिए वो उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराती थी, क्योंकि उसने 7 महीने में ही अपनी डिलीवरी करवाई, जिससे अभिमन्यु कमजोर पैदा हुआ और उसने काफी कुछ सहन किया। बाद में जब राजवंश फैमिली के साथ अभिमन्यु के रिश्ते ठीक नहीं थे तो वो चाहता था कि कम से कम मित्तल परिवार या उसके नानी के साइड के किसी भी परिवार के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे, ताकि उनके जाने के बाद अभिमन्यु का कोई अपना इस दुनिया में रहे। पता नहीं उन लोगों की दिक्कत क्या है, वसुधा ने परेशान होकर कहा।
इशिका से उनकी परेशानी देखी नहीं गई, वो उठकर उनके पास गई और काफी प्यार से बोली, दादी अगर आप कहो तो मैं दोनों फैमिली के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर सकती हूँ। इशिका ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने कियारा की जान बचाई थी। वो मिस्टर एंड मिसेज मित्तल से मिल चुकी थी, उनका व्यवहार काफी अच्छा था। इशिका को लगा कि अगर वो बात करके देखेगी तो शायद अभिमन्यु और मित्तल फैमिली के बीच के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। अभिमन्यु बाथरूम से बाहर आ गया था, उसने इशिका की बात सुनी तो वो सिर हिलाकर बोला, आप मित्तल फैमिली को जानती हैं मिस सिंघानिया? हाँ, मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा एहसान किया था। उनके मुताबिक ये एहसान है, लेकिन मैं बस एक हेल्प की थी, इशिका ने जवाब में कहा। अचानक अभिमन्यु को कुछ एहसास हुआ, उसने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम वही हो जिसने उस फैमिली की बेटी की जान बचाई थी? अभिमन्यु तुरंत ही समझ गया था कि कियारा की जान बचाने वाली आयशा नहीं बल्कि इशिका थी। इशिका हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, उसने पूछा, आपको कैसे पता? मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। अभिमन्यु उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले वसुधा बीच में बोल पड़ी, बहू ये क्या वही इंसान है जिसके बारे में तुमने मुझे सुबह बताया था? हाँ दादी, वही है, इशिका ने जवाब दिया। जब सुबह वो पुलिस स्टेशन गई थी और उसे आने में देर हो गई थी तो वसुधा उससे काफी कुछ पूछ रही थी, तब उसने उसे सब कुछ शॉर्ट में बताया था। हैरानी की बात थी कि वसुधा को अब तक सारी बातें याद थीं। इशिका ने एक नज़र वसुधा के चेहरे की तरफ देखा, पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी और अब वो स्वस्थ भी नजर आ रही थी। इशिका ने अपने मन में कहा, दादी की रिकवरी रेट बढ़ रही है, यही सही वक्त है उन्हें वो दवाई देने का। मुझे जल्द से जल्द उस पर काम करना शुरू करना होगा, बस एक बार ये रिसर्च खत्म हो जाए। अभिमन्यु उनकी बातों को सुन रहा था, अचानक उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसे सब समझ आ गया था कि कैसे आयशा इशिका का नाम लेकर फायदा उठा रही थी। अगर बात इशिका की नहीं होती तो अभिमन्यु को इस मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और हल्के तरीके से कहा, मिस सिंघानिया कल रात एक राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर का एक जॉइंट गेट टुगेदर है, डील होने की खुशी में पार्टी थ्रो की जा रही है, क्या आप मेरे साथ वहां चलना चाहेंगी? नहीं, इशिका ने बिना सोचे समझे सीधे सीधे मना कर दिया। अभिमन्यु ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो यहाँ दोनों फैमिलीज के बीच सुलह कराने की बातें कर रहा था, क्या अब आपको हमारे रिश्ते ठीक नहीं करने में सिंघानिया? इशिका ने जल्दी से नजरें उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा, उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो उसे परेशान करना चाह रहा है। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर अभिमन्यु का दिल रखने के लिए कहा, ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। वहीं अभिमन्यु की बातें सुनकर वसुधा ने तुरंत पूछा, ये मैं क्या सुन रही हूँ लड़के, तुम्हें तो मित्तल फैमिली पसंद नहीं थी, फिर तुम उनके साथ में पैचअप करने के बारे में कैसे सोच रहे हो? अभिमन्यु उनकी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे तो इशिका की सच्चाई साबित करने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाना था। उसने तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा, अच्छा दादी, आज आपने लंच में क्या खाया था? मैंने इडली और सांभर खाया था, स्वीट डिश में मफिन्स थे जिसके अंदर चीनी नहीं डाली गई थी, वसुधा ने जवाब दिया। वहीं पृथ्वी हैरानी से अभिमन्यु को देख रहा था, उसने कभी अपनी माँ के साथ रिश्ता जोड़ने का नहीं सोचा, यहाँ तक कि इस मीटिंग के दौरान भी राघव ने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे साफ यही कहा था कि उनके बीच में बिजनेस के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। अभिमन्यु इशिका को पार्टी में लेकर जा रहा था, ये थोड़ा हैरानी की बात थी। पृथ्वी ने अपने मन में कहा, जरूर सर, मिस सिन्हानिया के क्लोज आने के लिए ये सब कर रहे हैं। खैर, ये भी अच्छा है। रात को डिनर के बाद हमेशा की तरह इशिका बिल्लू को लेकर वॉक पर जाने लगी। वहीं पृथ्वी कुछ फाइल्स के साथ जा रहा था। वो दोनों लिफ्ट में एक साथ ही थे। अचानक पृथ्वी ने इशिका से पूछा, अच्छा मिस सिन्हानिया, आपको किस तरह के आदमी पसंद है? वो ये सब अभिमन्यु के लिए पूछ रहा था। हालांकि वो जानता था कि इशिका के पहले से बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब तक वो अभिमन्यु की पत्नी है तब तक इशिका अभिमन्यु से अलग नहीं हो सकती थी। उसके हिसाब से अगर इस बीच अभिमन्यु इशिका का दिल जीत लेगा तो वो हमेशा के लिए उसकी पत्नी बनकर रहेगी। उसका सवाल सुनकर इशिका थोड़ा चौंक गई। उसने कभी प्यार जैसी फीलिंग को महसूस नहीं किया था। उसने खुद को इस फीलिंग से दूर रखने का डिसीजन दिया था, इसीलिए वो हर एक लड़के को मना करती रही। उसके हिसाब से अगर वो किसी के साथ प्यार में पड़ जाती तो शायद उसका करियर कभी नहीं बन पाता। पृथ्वी के पूछते ही इशिका के दिमाग में सबसे पहले अभिमन्यु का हैंडसम चेहरा आया। वो अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए खोरे हुए स्वर में बोली, कम से कम 6 फीट लंबा तो होना ही चाहिए, हैंडसम, इंटेलिजेंट, उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आसपास के लोगों को समझता हो, कम बोलता हो और सबसे जरूरी, वो दूसरों को डांटने में अच्छा हो। इशिका का जवाब सुनकर पृथ्वी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनजाने में ही सही, लेकिन इशिका जो फीचर्स बता रही थी वो अभिमन्यु के ही थे। तो क्या अभिमन्यु की तरह इशिका भी उसे पसंद करने लगी थी? अभिमन्यु को आयशा की सच्चाई पता चल गई है तो वो राघव को अंधेरे में नहीं रहने देगा और जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश कर देगा। बस एक बड़ी सी पार्टी और तमाशा के बाद आयशा का सच सामने आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी कहानी के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज पढ़कर समीक्षा करिएगा।